तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम संकल्पों के अमूल्य खजाने की बात करेंगे। एक बहुत पुरानी प्रचलित किंवदंती है, किंवदंती माना जो समाज में प्रचलित छोटी कहानियाँ होती हैं, तो उसमें बताते हैं कि एक बार चार शक्तियाँ पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तो उन चारों को देख करके एक महात्मा जी ने प्रणाम किया, तो उन चारों में आपस में विवाद हो गया। एक ने कहा प्रणाम मुझे किया गया, दूसरे ने कहा नहीं मुझे किया गया। तो कहा चलो विवाद को ख़त्म करने के लिए महात्मा जी से ही पूछ लेते हैं, भैया आपने किसको प्रणाम किया है। तो महात्मा जी नज़दीक आए, महात्मा जी ने कहा आप अपना परिचय दो पहले, आप कौन कौन हो, फिर मैं बताऊंगा मैंने किसको प्रणाम किया। तो पहली शक्ति ने कहा मैं विधात्री हूँ, भाग्य बनाने वाली हूँ, भाग्य की लकीरें लगाती हूँ। तो महात्मा जी ने पूछा क्या तुम अपनी लगाई लकीरों को मिटा भी सकती हो। उसने कहा नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है। तो कहते महात्मा जी ने कहा मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। फिर दूसरी शक्ति ने कहा मैं बुद्धि शक्ति हूँ, महात्मा जी ने कहा मनुष्य को हमेशा गलत काम करने के बाद ही बुद्धि आती है, इसलिए मैंने तुमको भी प्रणाम नहीं किया। तीसरी ने कहा मैं धन शक्ति हूँ, रंक को राव बना देती हूँ, रोडपति को करोड़पति बना देती हूँ। महात्मा जी ने कहा तुम ऐसी हो कि तुमको पाकर के आदमी पागल हो जाता है, जो थोड़ी बहुत बुद्धि होती है उसकी वो भी चली जाती है, इसलिए मैंने तुमको भी प्रणाम नहीं किया। और चौथी शक्ति ने कहा मैं संकल्प शक्ति हूँ और मैं संभव को भी संभव कर सकती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा मैंने तुमको प्रणाम किया है। तो ये कहानी लोगों में प्रचलित है। अब इस कहानी का सार क्या निकला, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, संकल्प शक्ति है। संकल्प आत्मा के अंदर निहित है, जैसे एक बीज है, बीज के अंदर एक पेड़ बनाने की शक्ति निहित है, वो प्रकट होती जाती है, पेड़ बनता जाता है। व्यक्ति के संकल्प प्रकट होते जाते हैं वैसे ही जीवन बनता जाता है, जैसे मकान ईंट बाई ईंट बनता है, मनुष्य का जीवन संकल्प बाई संकल्प बनता है। कहते हैं भाई ये व्यक्ति ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसने संकल्प ऐसे किए तो ये ऐसा ही बन गया। तो हम किसका प्रोडक्ट हैं, वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन थॉट्स, हम अपने ही विचारों का प्रोडक्ट है, हमें बनाने वाले हमारे विचार हैं। अब बाबा कहती हैं एक भी विचार व्यर्थ नहीं होना चाहिए। शुरू शुरू की मुरलियों में बाबा ने कहा विकारी संकल्प खत्म करो, फिर बाबा ने कहा नकारात्मक संकल्प खत्म करो, और अब बाबा कहती हैं व्यर्थ संकल्प खत्म करो, क्योंकि बच्चों के अंदर अभी व्यर्थ संकल्प हैं, तभी तो बाबा कह रहे हैं ना। और व्यर्थ संकल्प ऐसे ही हैं जैसे कोई बहुत बड़ा टैंक तेल का भरा हो, पानी का भरा हो, और उसमें एक छोटा सा सुराख हो जाए तो सुबह तक क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। तो व्यक्ति की कितनी भी मानसिक शक्ति हो, व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे मानसिक शक्ति को नष्ट कर देते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, व्यर्थ संकल्प हमारी हमारे मनोबल को खा जाते हैं। अब ये व्यर्थ संकल्प आते क्यों हैं, कहती हैं अगर व्यक्ति में काम विकार होगा तो विकारी संकल्प आएंगे, क्रोध और लोभ होगा तो नकारात्मक संकल्प आएंगे, और मोह होगा तो व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए हमारा आखिरी पुरुषार्थ है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये व्यर्थ संकल्प स्मृति स्वरूप बनने नहीं देते हैं। हम बनना चाहते हैं लेकिन फिर बीच में आ गया व्यर्थ विचार, बिना काम का, बिना बात का, बिना जरूरत का। अगर हम देखें तो संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आता रहता है ऑटोमेटिक। जैसे कई बार हम देखते ही हैं घर में एक छोटा बच्चा है, आजकल तो छोटे बच्चे भी व्यस्त हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसे होता था कि बच्चा जब तक स्कूल जाए और या स्कूल जाने लगे तब भी उसके पास इतना पढ़ाई का बोझ भार नहीं होता था। तो घर के सारे बड़े लोग तो काम करते अपना अपना, और उस बच्चे को कोई काम धंधा होता नहीं, तो वो क्या करता है, कहीं बाहर गली में बैठता है, कंकर उछालता है, मिट्टी से खेलता है, घास के तिनके तोड़ता है। भाई कहीं तो वो बिजी अपने आप को करेगा, सार्थक काम नहीं मिलता है तो निरर्थक काम में लग जाता है, बच्चों के साथ हो हल्ला मचाता है। अब घर के लोग उसको पूछे तू ऐसा क्यों करता है, भाई अपने को बिजी तो करेगा, कहेगा मैं खेल रहा हूँ या जो भी है मुझे इसी में आनंद आ रहा। तो मनुष्य का मन भी ऐसे ही, जब इसको सार्थक काम नहीं मिलता, जब इसको व्यस्त नहीं किया जाता तो ये क्या करता है, कई व्यर्थ संकल्पों की मिट्टी उछालता है, व्यर्थ संकल्प रूपी कंकड़ों से खेलता है, क्योंकि इस पे पास कोई सार्थक काम नहीं। अगर इसको कोई सार्थक काम दे दिया जाए, ये मनन करो या ये योजना बनाओ या यहाँ कंसंट्रेट करो, तो ये उसमें बिजी हो जाएगा। लेकिन जब इसको ऐसा कोई काम दिया ही नहीं जाएगा तो ये व्यर्थ की तरफ जाएगा। और व्यर्थ संकल्प ऐसे ही हैं, जैसे बगीचे में हमने खाद डाली आम के पेड़ के लिए, लेकिन आम के पेड़ के चारों ओर खरपतवार उगाई, सारी खाद को खा गई, तो आम का पेड़ छोटा रह गया। अब होता क्या है कि कोई एक बहुत जरूरी काम था, उसके लिए हमको अपने मन को बहुत कंसंट्रेट करना था, लेकिन उसके ऊपर तो मन कंसंट्रेट हुआ नहीं और फालतू बातें आकर के मन की सारी शक्ति को खा गई। फिर जब वो काम की बात करने की बारी आती है तो हम कहते हैं जी हम तो थक गए, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, आज तो मुझे बड़ा भारीपन महसूस हो रहा है, इस काम को हम कल देखेंगे। तो जो शक्ति उस जरूरी कार्य में लगनी चाहिए थी वो सारी शक्ति कैसे बह गई, व्यर्थ संकल्पों में बह गई। जो खाद आम के पौधे को मिलनी चाहिए थी वो खाद जो व्यर्थ की घास थी वो खा गई। तो परिणाम क्या निकलता है, व्यक्ति को ऐसी महसूसता आती है मेरे काम पूरे नहीं होते, अधूरे ही पड़े रहते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, कितने दिन हो गए मेरा काम लटक रहा है, होता ही नहीं है, क्योंकि संकल्प की दृढ़ता नहीं है, संकल्प की एकाग्रता नहीं है, तो कार्य पूरे कैसे होंगे। इसलिए बाबा ने कहा समर्थ संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो तो सफलता मिलती है। मनुष्य का मन बहुत सूक्ष्म है, और जैसे बाबा कहते हैं बच्चों को जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। ज्ञान अमृत क्यों पीना है, क्योंकि मन को ज्ञान में बिजी करना है। ऐसे तो हमने ज्ञान सीख लिया, ज्ञान बाबा कहते हैं सेकंड का है, वो तो हमको पहले दिन ही आ गया, 7 दिन का कोर्स करते ही आ गया, लेकिन अभी भी हम क्यों सीख रहे हैं। बेसिक ज्ञान तो हमने तभी सीख लिया था, इसलिए सीख रहे हैं कि जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, तब तक इस मन को ज्ञान अमृत में डुबोए रखना है। एक दिन भी ज्ञान नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, नगरी तो माया की है ना। अब जैसे कोई आदमी बहुत बीमार हो और शहर में महामारी फैली हुई हो तो डॉक्टर क्या कहेगा, तेरे को रोज गोली खानी है। अब वो कहता है जी रोज खाना तो बड़ा बंधन है, मैं एक दिन नहीं खाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, तो कीटाणु तो चारों तरफ घूम ही रही है ना, एक दिन भी नहीं खाओगे तो कीटाणु क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे अंदर, क्योंकि ये महामारी फैली हुई है। तो ज्ञान सुनते 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, एक दिन मुरली नहीं सुनी तो कैसा लगता है, खाली खाली लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है, बुद्धि को भोजन नहीं मिला है। अरे भाई लोग कहेंगे तुमको इतने दिन हो गए ज्ञान सुनते हुए, एक दिन नहीं सुनी तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि माया की नगरी है। और मन इतना सूक्ष्म है, कितना जल्दी प्रभाव में आ जाता है, तन भी माया का है, जो आप चीजें पदार्थ यूज कर रहे हो वो भी माया नगरी से निर्मित है, उसका भी कुछ असर है, वाइब्रेशन पांचों तत्व हैं वो भी तमो प्रधान है, तो तमो प्रधानता का पलड़ा बहुत भारी है, एक दिन भी आप सावधानी नहीं रखेंगे तो तमो प्रधानता हावी हो जाएगी। और मन इतना सूक्ष्म है, इसको डाइवर्ट होने में देरी नहीं लगती है, इसलिए सबसे अधिक ध्यान मन के ऊपर चाहिए, बचा करके रखना है मन को। जैसे वो एक बात सुनाते हैं कि एक बार एक आदमी मंदिर में गया तो उसने प्रवचन सुना, महात्मा जी ने प्रवचन किया कि भाई दान करना चाहिए, जो लोग दान करते हैं उनको अगले जन्म में कई गुना फल मिलता है और जो दान नहीं करते अगले जन्म में भिखारी बनते हैं, इसलिए दान करना माना बीज बोना, जो बीज बोएगा वही फल खाएगा। किसी के घर में चाहे गोदाम भरे हुए हों वो भी खा के खुट जाएंगे, अगर वो बोएगा तो गोदाम फिर भर जाएगा, इसलिए बो बीज बो, दान करो पुण्य करो दुआएं मिलेंगी, ऐसे करके उसने भाषण किया। तो ये आदमी को भाषण बहुत पसंद आया और इसके मन में प्रेरणा उठी कि मुझे दान करना है, कुछ भी हो जाए आज तो मैं मंदिर में कुछ ना कुछ दान दे करके जाऊंगा, मैंने कभी दान किया ही नहीं और आज मुझे मालूम पड़ा दान का बड़ा भारी महत्व है। अब महात्मा जी प्रवचन करके अंदर चले गए, उसके बाद दान, उसके बाद आरती की थाली लेकर के दूसरे महात्मा जी आए और वो आरती की थाली सबके आगे घूमती है, उसमें एक दीपक जल रहा होता है, लोग उसमें से वो वारफेर लेते हैं और जिसकी जो श्रद्धा होती आरती की थाली में डाल देता है। तो इस आदमी के ऊपर प्रवचन का प्रभाव था तो इसने सोचा था कि मैं आज 100 रुपये थाली में डाल करके जाऊंगा और 100 का नोट उसने ऊपर की जेब में रख लिया था। लेकिन जब ऐसे आरती की थाली घूमने लगी तो उसने देखा कि कोई भी 100 का नोट नहीं डाल रहा है, तो उसने सोचा मुझे क्या मुसीबत है जो मैं 100 का डालूं, इसलिए आज 50 डाल देता हूं, कल आऊंगा तो फिर भी चाहिएगा 50 कल डाल दूंगा। तो ऐसे सोच के उसने ऊपर की जेब में 50 का नोट रख लिया। उसके बाद दान की थाली ऐसे अगले आदमी के पास आई, अगले के पास आई, तो उसने ऐसे ध्यान से देखा थाली में एक भी 50 का नोट नहीं था। तो उसने कहा देखो कोई भी 50 का नोट नहीं डाल रहा है, कोई 20 डाल रहा है, कोई 10 डाल रहा है और यहाँ कोई अनाउंसमेंट थोड़े हो रही है, फलाने ने इतना डाला, मर्जी है तो मैं 20 डाल दूंगा तो भी कोई अनाउंसमेंट होने वाली नहीं, 100 डाल दूंगा तो भी कोई नाम तो मिलना नहीं है। तो उसने 20 का नोट निकाल लिया, 50 का अंदर डाल दिया। उसके बाद थाली और आगे घूमती गई तो अब थोड़ी नज़दीक आ गई थी, उसने देखा 10-10 के नोट ज़्यादा हैं, 20 के भी 2-4 ही, तो उसने कहा मैं आज 10 डाल देता हूँ, अभी तो मंदिर में रोज आऊँगा, 10-10 डालूंगा, 10 दिन में 100 हो जाएंगे। अब 10 का नोट उसके हाथ में आ गया, फिर थाली और करीब आ गई तो एक आदमी ने 5 का सिक्का डाला थाली में, तो उसने कहा अरे अगर मैं सिक्का डालूं तो जोर से आवाज होगी, सबको पता पड़ेगा मैंने कुछ डाला है, नोट डालूंगा किसको पता पड़ेगा, तो वो 10 का नोट अंदर डाल लिया और 5 का सिक्का निकाल लिया। फिर थाली और आगे आई तो उसने कहा, 5 के सिक्के की भी आवाज़ वैसी ही है, 2 रुपए के सिक्के की भी आवाज़ वैसी ही है, इसलिए 5 वाला क्यों, 2 से भी तो आवाज़ हो सकती है, तो चलो मैं 2 रुपए डाल देता हूँ। 2 वाला सिक्का हाथ में आ गया। अब थाली केवल 2 व्यक्ति आगे थी, उसको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था रोशनी में। थाली में 1-1 के सिक्के बहुत पड़े हुए थे, तो उसने कहा नहीं, मैं तो 1 का ही सिक्का डालूंगा। फिर 1 का सिक्का हाथ में ले लिया, फिर थाली उसके सामने आ गई। और जब थाली सामने आई तो उसने 1 का सिक्का डालने के बजाय थाली में से 1 सिक्का उठा लिया। अब ये क्या है, जब महात्मा जी के प्रवचन का प्रभाव था तो उस प्रभाव में मन ने क्या कहा, 100 रुपए का दान देके जाऊंगा। वो प्रभाव धीरे धीरे हटता गया, तो अंत में क्या हुआ, दान देने के बजाय दान का पैसा उठा लिया। तो ये जो मनुष्य का मन है ये कैसा है, कितनी देर में ये विचलित हो जाता है। कलयुग का प्रभाव है, माया का प्रभाव है, शक्तिशाली बना नहीं है, तो ये शक्तिशाली बना रहे इसके लिए इसको ज्ञान अमृत में डुबोए रखो। इसलिए बाबा मुरली में कहता है, बच्चे ज्ञान की बातों को बुद्धि में रखो, ज्ञान में रमण करते रहो, बार बार ज्ञान का सिमरण करो, पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो, ये बात का चिंतन करो, बार बार सावधानी देता है। अगर मन फिसल गया तो सारी कमाई पर पानी फिर गया। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन में व्यर्थ संकल्प आ गया, कमाई गई। विकारी संकल्प आ गया कि कमाई चट हो गई। नेगेटिव आ गया कि कमाई चट हो गई। तो इसकी संभाल सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि कमाई का आधार है। और इसलिए बाबा मुरली में जिन्न की कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो मन है ना, ये जिन्न है। तो एक सेठ को जिन्न मिला था सौगात में। सेठ को जिन्न ने कहा, या तो मुझे काम दे नहीं तो खा जाऊंगा। तो सेठ ने एक सीढ़ी बनवा दी, महात्मा जी ने सेठ को राय दी, सेठ ने सीढ़ी बनवा दी, और वो जिन्न रोज चढ़ता उतरता, दिन रात चढ़ता उतरता, ना ये खत्म होगा काम, ना वो सेठ को खाएगा। तो हमारे मन में अभी ज्ञान योग से शक्ति बहुत भर गई है, मन तो हमारा शक्तिशाली हो गया। अभी शक्तिशाली मन को काम चाहिए, और जितना मन अधिक शक्तिशाली होगा उतना काम को चुटकियों में पूरा करेगा। जब कमजोर था तो धीरे धीरे करता था, अब ये इतना शक्तिशाली हो गया, फिर उसे दूसरा काम चाहिए, फिर तीसरा चाहिए। ज्ञान में आकर के काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, तो फिर इसे बहुत सेवा काम व्यस्तता चाहिए। तो इसके लिए फिर बाबा ने भी एक सीढ़ी बनवा दी है। कौन सी सीढ़ी है, 5 स्वरूपों की सीढ़ी है। इसके ऊपर चढ़ो और उतरो, घूम करके फिर वहीं आ जाओ, घूम करके फिर वहीं आ जाओ। तो जब भी लगे ना कि भाई मन खाली है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, और जब काम नहीं होगा मन खाली होगा, तो सचमुच ये जिन्न की तरह मनुष्य को खाता है। कहेंगे मेरा मन ही मुझे खाने को दौड़ रहा है, मनुष्य को महसूसता आती। तो उस समय स्वदर्शन चक्र फिराने में मन को लगा दो। देखो कई भाई बहनों को ये शिकायत रहती है कि हमको ठीक से नींद नहीं आती है। अब नींद ना आने का भी कारण क्या होता है, व्यर्थ संकल्प। जब फालतू बातें सोचेंगे तो उचट जाती है नींद, ऐसे कहती है, मन एक्टिव हो जाता है व्यर्थ सोचने से। और नींद के लिए एक्टिव मन नहीं चाहिए, निष्क्रिय मन चाहिए, शिथिल मन चाहिए। तो जब आप 5 स्वरूपों का चिंतन करते हो या ज्ञान की किसी भी बात का चिंतन लगातार करते हो, तो मन को थोड़ी मन को काम मिला, और ये ऐसा काम मिला जिसमें उसको आनंद आया। तो एक तो काम मिला, आनंद आया, और काम करते करते उसको थोड़ी थकान भी हुई। थकान हुई तो वो थोड़ा निष्क्रिय भी हुआ, शिथिल भी हुआ और फिर उसको नींद आ गई। इसलिए अगर हमने ज्ञान के मनन का अभ्यास डाला होगा, ज्ञान मनन का सुख लेना सीखा होगा, तो नींद की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक ही बात के ऊपर मन को टिकाओ और उस एक बात की गहराई में जाओ, तो इतनी सुंदर सुंदर बातें उसमें से और निकलेंगी और मनन करते करते बहुत अच्छी नींद आएगी। अभी बाबा ने 4-5 दिन पहले मुरली में बोला था कि अगर स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते नींद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते नींद की तो सुबह उठेंगे तो फिर बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घूमेगा। इसलिए मन को व्यस्त रखने का तरीका है ज्ञान का मनन, क्योंकि सेवा की योजना भी बनाते ही हैं लेकिन सेवा की तो लिमिट है। चलो हम अपने मन को फिर व्यस्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प आपकी बुद्धि का भोजन है, और जैसे भोजन में वैरायटी चीजें चाहिए ऐसे संकल्प भी वैरायटी चाहिए, एक ही प्रकार का नहीं। कोई नया विचार मिलता है तो मन प्रफुल्लित होता है उस विचार को सुन करके, उस विचार पर मनन करके। जैसे कोई नई चीज खाने को मिलती है तो खुशी होती है। और जैसे हम कहते हैं बाबा सर्वशक्तिवान है, तो बाबा के संकल्प शक्तिशाली हैं, इसीलिए तो सर्वशक्तिवान है ना। और हम बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है, कब? जब हमारे भी संकल्प शक्तिशाली हों। तो संकल्प की दृढ़ता, अचल अडोल संकल्प, एक रस संकल्प, जो कर लिया वो कर लिया, कोई भी बात आए परिस्थिति आए उसको बदल न सके, ऐसी दृढ़ता संकल्प में चाहिए। मुझे करना ही है, करना ही है। और ये भी है कि जब भी कोई दृढ़ संकल्प आत्मा करती है तो बातें आती हैं उसको हिलाने के लिए। इसीलिए तो यादगार में कहानियों में बना हुआ है, भयंगद ने पांव जमाया फिर उसको हिलाने आए राक्षस, या सीता बैठी है भगवान की याद में उसको राक्षसियाँ हिला रही हैं। तो ये उसी की यादगार है कि आत्मा ने दृढ़ता धारण की और उस दृढ़ता को हिलाने के लिए पता नहीं कितनी बातें आई। हम अपने रोज के जीवन में देखते हैं, एक छोटे से बीज को आप देखिए, एक छोटे से बीज को पेड़ बनने में, पौधा बनने में कितनी बातें आती हैं। इसी तरह से संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने में बातें तो आएंगी। अब बीज की कहानी देखिए, एक छोटा सा बीज है, उसको हमने जमीन में बो दिया। संकल्प भी तो बीज है ना, उसको भी तो अपन बोते हैं और उस बोए हुए संकल्प से पेड़ बनता है। अब बीज से पेड़ बनने की कहानी कितनी जटिल है, अपन तो बो के आ गए लेकिन उस बीज ने किन किन परिस्थितियों का सामना किया देखिए तो सही। सबसे पहले तो वो खुली आंखों से सारी दुनिया को देख रहा था बीज, लेकिन अब वो बेचारा अंधेरी कोठरी में चला गया। अंदर क्या है? अंधेरी गुफा है और इतनी सख्त है वो जमीन, भले अपन उसको थोड़ी खोखली कर देते हैं लेकिन फिर भी अब उसमें वो औंधे मुंह गया। सीधे मुंह जाता है कि औंधे मुंह जाता है? मुंह नीचा करके फिर जाता है। अब धरती कहती है तू मेरा वजन सहन करेगा? वो कहता है हाँ मैं सहन करूंगा। और अंदर ही अंदर थोड़ा उसको पानी मिला, पानी से बेचारे के होंठ थोड़े गीले हुए, थोड़ा मुंह खुला और वो सीधा हो गया। अंदर ही अंदर अपने आप सीधा हुआ ना। सीधा होकर के उसमें इतनी ताकत छोटे से बीज में कि धरती फट गई। और क्या हुआ? उसके होठों के बीच में से एक छोटा सा अंकुर धरती से बाहर निकल आया, एक बीज ने इतनी सख्त धरती को फाड़ दिया। बीज में कितना वजन है भला, लेकिन फट गई धरती और अंकुर बाहर निकल आया। अब ये उस संकल्प की दृढ़ता है, वो अपने काम में डटा पड़ा है, तो परिस्थितियां प्रतिकूल होते हुए भी उसको रास्ता देंगी, लेकिन आपको डटे रहना पड़ेगा। अब बीज बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, एक चिड़िया आई उसके हरे हरे पत्तों को देख करके चोंच मारने के लिए, आंधी का झोंका आया, इधर डुला रहा इधर डुला रहा, थोड़ा तेज झोंका आए, बेचारे की जो दो कोपल फूटी है ना वो कब गिर जाए ध्वस्त हो जाए मालूम नहीं, फिर भी वो अपने पांव जमा करके खड़ा हुआ है। उसके बाद तेज धूप उसकी कोमल काया उसको भी सहन कर रही है। उसके बाद आसपास उगने वाले झाड़ झंखाड़ वो कहते हैं हम तरह से ऊंचे जाएंगे, उसको ढक लेते हैं, लेकिन बीज क्या करता है, अचल अडोल अपने काम में लगा रहता है। पांच तत्वों से उसकी पालना होती है और पांचों तत्व ही उसका पेपर भी लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे सारी बाधाएं पार करते हुए उसके ऊपर फूल खिलते हैं, और वो फूल किसके काम आते हैं, उसके खुद के काम तो नहीं आते ना। तो ऐसे ही जब हम एक शुभ संकल्प पैदा करते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे बाबा के लिए ये करना है, तो उसमें भी खुद का मन कई बार बीच में बाधा बनता है, कई बार दूसरे लोग, कई बार परिस्थितियां, कई बार वातावरण, कई बार शंका अनुमान, कई बार बहुत प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन अगर बीज की तरह से संकल्प में दृढ़ता है तो वो सारी बातों को पार करके भी फूल खिलने की स्टेज में आ जाएगा, माना परोपकार करेगा, परोपकारी बन जाएगा। हमारा संकल्प दृढ़ है, सफल हो गया तो हम परोपकार के निमित्त बनेंगे, सेवा के निमित्त बनेंगे। अब जैसे बाबा ने दृढ़ संकल्प किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया, बाबा ने जो पिछली मुरली चलाई थी उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा के दृढ़ संकल्प की महिमा करते हुए कहा था कि एक ब्रह्मा के दृढ़ संकल्प ने इतने बच्चों की रचना कर दी और देश विदेश में सेवा का इतना विस्तार कर दिया, अगर बच्चे भी जो इतने बच्चे हैं उनके संकल्प में दृढ़ता आ जाए तो कितनी कमाल हो जाए। तो बच्चों के संकल्प तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन संकल्प में अभी क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए, जो सोच लिया वो करना ही। अब ये खासियत ही नई दुनिया लेके आने वाली है, हमने जो सोचा वो बोला और वही किया, इससे दुनिया बदलेगी। नहीं तो दुनिया में केवल सोचने वाले और केवल बोलने वाले तो बहुत। मैं आज एक सभा में गई थी तो वहाँ एक वक्ता थे, मातृ सम्मेलन था, तो उस वक्ता ने लगभग एक घंटा भाषण किया और उसमें उसने भोजन की शुद्धि के ऊपर भाषण किया, भाई आप शुद्ध भोजन खिलाओगे बच्चे को तो बच्चे के संस्कार अच्छे बनेंगे, बाजार का भोजन अच्छा नहीं होता, बाजार की चीज़ें, बाजार में जो लोग बनाते हैं वो किस भावना से बनाते हैं, किस संकल्प से बनाते हैं, स्वच्छता भी नहीं होती है, बाजार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो भोजन आप प्यार से बनाओगे उसमें आपका प्यार भरा होगा, उससे बच्चे का जीवन अच्छा बनेगा, ऐसे करके उसने माताओं को लंबी चौड़ी शिक्षा दी। फिर जैसे बाबा ने हमसे भी सेवा करवाई, उसके बाद प्रोग्राम पूरा हो गया, उसके बाद जैसे सभी मिलते हैं आपस में एक जगह बैठ करके, उनके मुख्य लोग कुछ हम लोग आपस में मिले, तो उन्होंने प्रसाद सबको दिया और हमको भी देने लगे। हमने कहा कि हमने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं बहन जी, ये तो हमारे यहाँ का प्रसाद है। तो हमने पूछा कि आपने बनाया है क्या? बोला नहीं, आजकल बनाने का कहाँ है, आजकल तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है बाजार में, सब कुछ बना बनाया मिलता है आजकल। वही व्यक्ति था। तो हमने कहा अभी अभी तो आप भाषण में कह रहे थे माताओं को आपने एक घंटा शिक्षा दी, घर में भोजन बनाओ, भोजन में बड़ा प्यार होता है, घर वाले भोजन से संस्कार अच्छे बनते हैं। तो बेचारा क्या बोले, कई लोग 20-25 लोग बैठे हुए थे, उसने बेचारे ने ऐसे गर्दन कर ली, अपना संकल्प अभी अभी तोड़ दिया। भाई इतना लंबा भाषण करने की क्या जरूरत थी, जब पता था कि मैं बना बनाया प्रसाद बटेगा और वो बाजार से आया प्रसाद इन माताओं को भी खिलाना है, हमको भी खाना है, तो फिर ये इतनी लंबी चौड़ी कवायद करने की क्या जरूरत। तो दुनिया में क्या है, केवल संकल्प है या वाणी है लेकिन कर्म नहीं है। तो परिणाम क्या निकलेगा, बीज बोया, पानी डाला पर अंकुर नहीं निकला, फूल नहीं खिला, तो क्या किया, आपकी जमीन भी बेकार, आपका बीज भी बेकार, आपने फालतू मेहनत की। तो जब संकल्प कर्म में ही नहीं आया तो वो तो व्यर्थ हो गया ना, फालतू की मेहनत हो गई ना, बोया और रिजल्ट निकला नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प करो, माना बीज बो, लेकिन उसका फल निकलना चाहिए। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा की दृढ़ता का उदाहरण दिया कि शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, निश्चय हो गया। फिर बाबा ने कहा मुट्ठी खोल दो, तो बाबा ने सचमुच मुट्ठी खोल दी, यज्ञ बन गया, इतने बच्चों की पालना हो गई। तो बाबा ने कहा अगर एक एक बच्चा ऐसी दृढ़ता धारण करे तो कितना जल्दी विश्व परिवर्तन हो जाए। विश्व परिवर्तन का आधार है करनी और कथनी की एकता, जो हम कहें वो हम करें, या फिर कहें ही नहीं, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी की है हमारे साथ कि भाई बोलो, बोलना ही पड़ेगा। जब हमको नहीं है करने की हिम्मत तो हम क्या करें, ना बोले, लेकिन अगर बोल दिया तो करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, बोझ है वो। तो हम बाबा के बच्चों की ये पहचान है, हमारी करनी और कथनी एक, यही है ना भगवान के बच्चों की पहचान। एक महात्मा बुद्ध के शिष्य की बात सुनाते हैं, वो शिष्य काम कम करता था लेकिन बखान ज्यादा करता था। जहाँ भी जाता था कहता था मैं 2 बजे उठता हूँ, बहुत मंत्र जपता हूँ, बहुत साधना करता हूँ, फिर दिन में भी इतनी बार मंत्र जपता हूँ, फिर इतनी साधना करता हूँ, फिर रात को भी इतने मंत्र जप करके सोता हूँ, इतनी साधना करता हूँ। जहाँ जाता था ऐसे ऐसे सुनाता था, करता कराता तो कुछ नहीं था, सुनाता बहुत था। तो महात्मा बुद्ध को मालूम पड़ा, तो महात्मा बुद्ध को बड़ी दया आई कि इसका उद्धार कैसे होगा, इसने कपड़े तो सन्यासियों वाले पहन लिए लेकिन बोलता है सारा झूठ, करता कुछ है नहीं। साधारण आदमी झूठ बोले तो कम पाप लगे, सन्यासी बन झूठ बोले ज्यादा पाप लगे, तो इसको पाप से बचाना है। महात्मा बुद्ध बहुत दयालु थे, तो एक दिन महात्मा बुद्ध ने उनको बुलाया और ऐसे सड़क के ऊपर बहुत सारी गायें जा रही थी, उस जमाने में लोग बहुत गऊ पालते थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ये कितनी गऊ है जरा गिनती करना। तो गिनती करने में तो बड़ा होशियार था, उसने कहा जी 356 गऊएं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अच्छा, क्या गिनती कर लेने से ये गाय तुम्हारी हो गई, तुमने गिनती की और तुम गऊओं के मालिक बन गए क्या? बोला नहीं बनते, गिनती करने से थोड़ी कोई गऊओं का मालिक बन जाता है। तो बोला मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मालिक बनने के लिए इनके लिए छप्पर डलवाना पड़े, पहले बड़ी जमीन लेनी पड़े, फिर चारे और पानी का प्रबंध करना पड़े, फिर इनका कोई सेवक 2, 5, 10 रखने पड़े, फिर उन सेवकों को पैसे देने का प्रबंध करना पड़े, फिर इन गऊओं के लिए सर्दी गर्मी धूप छाया वो सब प्रबंध करना पड़े, फिर इनके बाल बच्चों की आगे विस्तार उसका भी प्रबंध करना पड़े, फिर इनका दूध दूहने वाला भी कोई चाहिए। इस तरह से उसने कहा, जी ये तो इनका मालिक बनने के लिए तो बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत है, बहुत कार्य करना पड़े हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो तुम भी केवल मंत्रों की गिनती बताते हो लोगों को, मैं रात को सोता हूँ इतने मंत्र जपता हूँ, सुबह उठता हूँ इतने मंत्र जपता हूँ, फिर दिन में ऐसे ऐसे करता हूँ, तो क्या लोगों को गिनती बता देने मात्र से मंत्र तुम्हारे हो गए, मंत्रों पर तुम्हारा अधिकार हो गया, मंत्रों से तुमको कोई शक्ति मिली? तो उसको समझ में आ गई कि केवल गिनती लोगों को बता देने से मेरे अंदर तो कुछ जाता नहीं है, भीतर से तो मैं खाली और खोखला हूं। तो कहा, जैसे गाय का मालिक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे मंत्रों को भी जीवन में उतारने के लिए इसी तरह से मेहनत करनी पड़ती है। एक एक संकल्प अंदर उठा, फिर उसको देखा कि ये प्रैक्टिकल हुआ। मुझे संकल्प उठा कि भाई मैं 100 मंत्र जपूंगा, है बुद्ध ने उसको समझाया, तो देखो वो 100 मंत्र तुमने सचमुच जपे, प्रैक्टिकल में हुआ, या एक जप के ही तुम थक गए, दो जप के ही तुम थक गए। तो जैसे कोई एक दो गाय की सेवा करके थक जाए तो भला वो 356 गवों का मालिक कैसे बनेगा, इसी तरह से कोई एक दो मंत्र जप करके और फिर कहे जी मैं 100 मंत्र जपता हूँ तो उसमें कैसे शक्ति आएगी। इसलिए तुम जो लोगों को सुनाते हो पहले वो करो और उसका आकलन करो कि वो मेरे से पूरा होता है कि ऐसे ही मैं केवल कहता हूँ, तो तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी। जीवन में कभी तुम ठोकर नहीं खाओगे, धोखा नहीं खाओगे, नहीं तो जो भीतर से खाली आदमी होता है ना, कोई छोटी मोटी बात आती है, परिस्थिति आती है, धोखा खा जाता है। अब कई लोग ज्ञान का शो बहुत करते हैं, मान लो मैं जी ऐसे करता हूँ, बाबा को मैं ऐसे याद करता हूँ, बाबा ये मेरा तो सब कुछ, जी बाबा तो मुझे पर्चा देता है, बाबा तो मुझे दिखता है, बाबा तो मेरे साथ रहता है, बाबा तो सदा ही मेरा सहयोगी है, बस बाबा के बिना मेरा कुछ नहीं है, बहुत बाबा 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 करता है। लोग सोचते हैं जैसा समर्पित बुद्धि तो कोई है ही नहीं। फिर आ गया छोटा मोटा पेपर, धन का पेपर आ गया, बीमारी का पेपर आ गया, संतान की तरफ से पेपर आ गया, और वो डगमगा गया, क्लास भी छोड़ दी, मुरली भी भूल गया, योग भी भूल गया, जो थोड़ा बहुत यज्ञ सहयोग था किसी भी तरीके का वो भी भूल गया। तो अब लोग उसको क्या कहेंगे, अरे तुम्हारा बाबा कहाँ गया, तुम तो सबसे ज्यादा बाबा बाबा करते थे, कहाँ गया बाबा। इसका मतलब क्या हुआ, उस तह के ऊपर था। जैसे बाजार में जाते हो ना आप, तो कई तरह के रंग के कपड़े होते हैं, तो आप पूछते हो दुकानदार से, भाई इसका रंग उतर तो नहीं जाएगा, वो कहेगा नहीं जी, धूप में सुखा लो, पानी में डाल लो, बरसों तक यूज कर लो, इसका रंग नहीं जाएगा। तो आप क्या करते हो, भाई ये कितना सा टुकड़ा मुझे दे दे काट के, मैं जरा पानी में डाल के देखूं। घर में लाके पानी में डालोगे, लाल रंग था, पानी का रंग लाल हो गया, आप कहोगे देखो पानी को छूते ही इसने तो अपना छोड़ दिया रंग, धूप में डाला वो थोड़ा बहुत बचा था वो भी चला गया। तो आप उस कपड़े को खरीदोगे क्या, उसके पर्दे बनाओगे, चादर बनाओगे? आप कहोगे भाई आप अपना कपड़ा अपने पास रखो, हमको ऐसा नहीं चाहिए। और कोई बच्चा भी ऐसा ही हो, थोड़ी बात आई उसका भी रंग उड़ गया, थोड़ी बात आई उसका भी रंग उतर गया, उतर जाता है ना, परिस्थिति आते ही चेहरे की रौनक उतर जाती है, रंग उतर जाता है। तो बाबा को ऐसा बच्चा चाहिए, क्या करेगा बाबा ऐसे बच्चे का, बाबा को तो शक्तिशाली बच्चा चाहिए, परिस्थितियां आए पर रंग ना उतरे। तो ऐसा कब बनेंगे, जब हमारे संकल्प में दृढ़ता होगी, जब हमारी करनी और कथनी एक होगी। पहले करनी, पीछे कथनी। अगर हम बिना किए कहते ही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फसल पकने से पहले ही उसको काट देते हैं। वो नष्ट हो जाती है पकने से पहले, उसे पकाइए, पकने के बाद वो सबके काम आएगी। और इसके लिए संकल्प को ट्रेनिंग चाहिए, अंदर ही अंदर अपने से बातें चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संकल्प बार बार आता है, नेगेटिव संकल्प या व्यर्थ संकल्प बार बार आता है, अब उससे कैसे छूटें? कोई चीज घर में बार बार घुसती है, चूहा बार बार घुसता है, आप कैसे छूटते हो उससे? टाइम नोट करते हो, ये कितने बजे घुसता है, भाई ये शाम को 5 बजे घुसता है। फिर कितने घुसते हैं, 2 हैं 4 हैं के अकेला घुसता है, ये भी नोट करते हो। फिर देखते हो किधर से घुसता है, इस जाली में से घुसता है, इस दरवाजे के नीचे से घुसता है, मोरी में से घुसता है, पहले चेकिंग करते हो ना। चेकिंग करने के बाद फिर उसके सारे रास्ते बंद करते हो, जाली में है तो जाली को कुछ लगाओ, मोरी है तो मोरी को कुछ लगाओ, दरवाजे के नीचे की वो जगह है तो वहां लकड़ी का टुकड़ा फंसा हो ताकि इसको अंदर आने का रास्ता ना मिले। तो ऐसे ही कोई कौन सा संकल्प बार बार घुसता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प हमारी दृढ़ता को कम करते हैं। कौन सा संकल्प बार बार घुसता है? एक ही है कि कई सारे हैं, और किधर से घुसता है, किस समय इसको मौका मिलता है? पहले आप इन सारी बातों को चेक करो, फिर नोट करो डायरी में, ये वाला संकल्प इस समय आता है, इतनी देर तक मन में छाया रहता है, ये एक है या दो हैं, और इधर से एक घटना घटती है, ये बात होती है, तो ये व्यर्थ संकल्प पैदा हो जाता है। और उसके बाद फिर या तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, आने का दरवाजा बंद कर सकते हो, तो दरवाजा बंद करो, और नहीं तो उसको मोड़ करके समर्थ संकल्प उसकी जगह पैदा करो। जैसे मान लीजिए किसी से नफरत है, बिना सिर पैर के, बिना किसी आधार के, बिना किसी के गलत काम किए हमको किसी से नफरत है, मान लीजिए नफरत का संकल्प पैदा होता है, तो क्या करो? या तो उसको आने से रोको, अगर वो आने से रुकता नहीं है तो उस आत्मा के लिए 100 बार प्यार का संकल्प पैदा करो, जानबूझ करके, बैठ करके। अनकॉन्शियसली नफरत आ जाती है, आप चाहते तो नहीं हो, लेकिन संस्कार बना है या कोई पूर्व का हिसाब किताब है, आ जाता है। तो क्या करो? जानबूझ करके उस आत्मा के लिए 100 अच्छे विचार, उसके 100 गुण याद करो, 100 महिमा करो, उसकी 100 अच्छी बातें बुद्धि में लाओ, ये बहुत अच्छी आत्मा है। देखो बाबा ने क्या कहा, मुझे लास्ट बच्चे से भी बहुत प्यार है। बाबा ने हमारे सामने एक आदर्श रखा, मैं इतना ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा, और ऊंचे से ऊंचे को भी सबसे जो लास्ट वाला है उसके साथ भी प्यार है, ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचे से भी प्यार है। जैसे लौकिक दुनिया में क्या कहते हैं, भाई जो बहुत पढ़ा लिखा है वो भी केजी के बच्चे को पढ़ा दे, पढ़ा सके प्यार से, तो उसकी पढ़ाई की सफलता है। अगर वो कहे जी मैं तो केवल बड़ों को ही पढ़ा सकता हूँ, छोटों को मुझे पढ़ाना ही नहीं आता है, तो वो क्या पढ़ाई की सफलता है? तो ऊंचे से ऊंचा बाबा और लास्ट नंबर वाले को भी जिगरी प्यार देता है। तो बाबा कोई तो विशेषता देखता है ना उसकी, सबसे बड़ी विशेषता बाबा ने क्या देखी? एक मुरली में बाबा ने कहा था, कम से कम बाबा बाबा तो कहता है, सबसे पहली विशेषता। दूसरी, एक मुरली में बाबा ने कहा था, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो बच्चा कम से कम ये तो जानता है कि मैं कौन। तो ऐसे ही जिस आत्मा के लिए मन में कोई भी संकल्प आता उसकी विशेषता ये दो तो है ही जो बाबा ने बताई, वो बाबा बाबा बोलता है, दूसरी बात वो मैं कौन हूँ इस प्रश्न को जानता है, तीसरी बात वो बाबा के परिवार का है, बाबा की माला का मणका है, 9 लाख वाली माला का तो मणका है, तो जिसको भगवान प्यार करे उसे मैं क्यों ना करूं। तो कोई भी जो ख्याल आता है अटेंशन देकर के उसको मोड़ो, ध्यान देकर के मोड़ना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव का संस्कार अंदर बना है तो आप पॉजिटिव का नहीं बना सकते क्या? बना सकते हो ना। जैसे अपने से कोई चीज़ गिर जाए तो अपन उसको उठा सकते हैं, कोई चीज़ गलत लिखी जाए तो उसको मिटा करके सही लिख लेते हैं, कोई दाग धब्बा निशान लग जाए तो उसको भी मिटा लेते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प भी ऐसा ही, अगर इसको अपन लगा सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। दुनिया में हर अनचाही चीज़ को अपन मिटा लेते हैं तो भला इसको क्यों नहीं मिटा सकते। तो ऐसे अंदर अंदर अपने से बातें करेंगे, चेकिंग करेंगे, तो दृढ़ता को कमज़ोर करने वाले जो व्यर्थ संकल्प है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। और बाबा ने कहा जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। सफलता हम ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफल होने का तरीका है संकल्प की दृढ़ता, व्यर्थ की समाप्ति। ओम शांति।